श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो सबसे पहले पूछना यह कि कितना समय है। हु इज गाइडिंग अथॉरिटी। कितना समय है। 1 आवर। अभी 7:25 हो गए, 8:30 तक कर सकते हैं। जय हो। और उसमें और एक पूछना है मुझे कि मदन मोहन जी के विषय में पहले बोलना है कि गोपाल भट्ट के महाराज के पहले बोलना है। गोपाल भट्ट जी महाराज, ठीक है। हरे कृष्ण। उसके लिए टाइम अलॉटमेंट बहुत ज़रूरी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदनमोहनो। श्री राधा मदनमोहनो। हरे कृष्णा। आज का दिन बहुत भाग्य का दिन है, परम भाग्य का दिन है। श्री मदन मोहन जी भगवान हमारे गोवर्धन कृषि वाणिज्य क्षेत्र में आज के दिन प्रकट हुए थे ना, 1 साल पहले। हाँ, तिथि के अनुसार, गोपाल भट्ट गोस्वामी के आविर्भाव की तिथि के अनुसार आज उनका 1 साल का वास्तव्य। 2 साल हो गए। वाव, 2 साल का वास्तव्य पूर्ण हो जाता है। परम भाग्य की बात है कि मुझे भी यहाँ पर बैठने का मौका पहली बार मिला है। अब मैं आप सबका और श्री मदन मोहन जी महाराज का बहुत ही ऋणी हूँ और कृतज्ञ हूँ इस मौके के लिए। और इससे बड़ा परम भाग्य और प्रिविलेज और कोई नहीं हो सकता है। सो गोपाल भट्ट जी गोस्वामी महाराज, आज इनका आविर्भाव दिवस है। तो इनका जन्म बेलगुंडी गांव में श्रीरंगम क्षेत्र में हुआ था। आज की तिथि में यानी पौष कृष्ण पक्ष पंचमी है आज, अमावस्यांत मंद के हिसाब से। और माघ शुद्ध पंचमी है पूर्णिमास्यांत महीने के हिसाब से, क्योंकि ब्रज में पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना गिनते हैं। और हमारा भी शायद वैष्णव कैलेंडर वैसे ही पूर्णिमा से पूर्णिमा गिनता है। और बाकी कालगणना अमावस्यांत महीने के अनुसार होती है। एनीवेज, तो वेंकट भट्ट श्रीरंग क्षेत्र के श्रीरंगनाथ जी भगवान के पुरोहित वंश में आते हैं। तो वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल। और वेंकट भट्ट वैसे ऐश्वर्य भाव में भगवान का पूजन कर रहे थे। श्रीरंगनाथ जी भगवान तो ऐश्वर्य भाव में हैं। और श्रीरंगनाथ जी का उगम मतलब प्राकट्य जो है वो ब्रह्मा लोक में हुआ था। भगवान ने स्वयं अपना विग्रह ब्रह्मा जी को दिया था सृष्टि के निर्माण में। फिर श्राद्ध देव मनु ने वो तपस्या करके वशिष्ठ मुनि के साथ में वो ब्रह्मा जी से मांग लिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो चाहता नहीं आपको देना है, लेकिन शायद भगवान से ही पूछते हैं। तो जब भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा कि मेरा अवतार ही हुआ है पृथ्वी पर जाने के लिए, मैं इंतज़ार कर रहा था। तो फिर कोई प्रश्न नहीं रुका। श्राद्ध देवी मनु और वशिष्ठ मनु ने उनकी प्रतिष्ठापना अयोध्या में की, और कई पीढ़ियों तक अयोध्या में रंगनाथ जी का पूजन किया गया, तब तक जब तक राम भगवान लंका से सीता को वापस प्राप्त करके जब लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात जब विभीषण जाने लगे तो विभीषण ने कहा कि आपके विरह में मैं बहुत तड़पूंगा, तो भगवान ने वो श्री रंगनाथ जी के विग्रह उनको भेंट में दिए और फिर तभी वो कावेरी के किनारे पे जाकर बसे उनके कंडीशन के अनुसार। मैं आपके संग चलूंगा लेकिन आप जहाँ नशे रखोगे वहीं पर रह जाऊंगा। तो कावेरी में उनको स्नान संध्या करने का वंदन करने का दिल हुआ तो उन्होंने वहाँ ठाकुर जी को रखा, और स्नान संध्या वंदन हुआ तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं अब यही रहूँगा। फिर उन्होंने उनको सांत्वना दिया कि मैं जिस प्रकार से यहाँ पर लेटा हूँ मेरी दृष्टि ऐसे होगी कि आप राज सिंहासन पर बैठ कर मेरा दर्शन कर सकते हो। आई विल सी यू एंड यू विल सी मी, इसका डायरेक्ट कनेक्शन। वो मेरा हाथ जो है वो आपके ओर रहेगा आशीर्वाद के रूप में, और मेरे चरण भी आपके ओर रहेंगे आशीर्वाद के रूप में। और एक रोचक खबर ऐसी है कि आज भी श्री रंगनाथ जी के मंगला होने के पहले उनके चरणों में चंदन और तुलसी और फूल रहते हैं। विभीषण जी उनको रोज सवेरे मंगला होने के पहले अपना पूजन करके चले जाते हैं अदृश्य रूप में। उसके पहले दृश्य रूप में आते थे लेकिन एक बार बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, उन्होंने एक एक्सीडेंट कर दिया, एक ब्राह्मण की हत्या हो गई उसके अंदर, तो विभीषण महाराज को अरेस्ट किया गया और फिर स्वयं रंगनाथ जी प्रकट हुए, विष्णु भगवान प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए अयोध्या से, और हजारों लोगों को प्रभु रामचंद्र का दर्शन हुआ। तब उन्होंने कान में विभीषण को कहा कि अभी गुप्त रूप में आया करो, प्रकट रूप में मत आओ, कि उनके चक रथ के पहिए के बीच में एक ब्राह्मण फंस गया और मर गया। तो उधर आचार्य बताते हैं कि एक भक्त का दर्शन होने से भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि विभीषण को अरेस्ट किया तो उसके बहाने भगवान स्वयं आए। तो ऐसे रंगनाथ जी के वो पुरोहित थे, पुजारी, उनके पुत्र थे गोपाल, और उनके भाई का नाम आगे जाकर बना प्रबोधानंद सरस्वती, ऐसा ये परिवार है। तो जब इनकी उम्र 11 साल की हुई तब चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में पहुंचे चतुर्मास के समय, और 4 महीने उन्होंने निवास किया वेंकट भट्ट के घर पे। अभी अपने पास समय कम है लेकिन ऐसी कृपा है भगवान की, अनन्य कृपा कहते हैं ना, कॉजलेस मर्सी, इसका कोई कारण नहीं होता है। उस अनन्य कृपा से जिस घर में चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रहे, वेंकट भट्ट के जिस घर में 4 महीने रहे, दिन भर चैतन्य महाप्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर में प्रांगण में बहुत धुआंधार कीर्तन किया करते थे। सब रंग क्षेत्र के वासियों को उन्होंने आनंद के सागर में डुबो दिया 4 महीने के लिए, हर रोज दिन भर, वो भी 9 से 11 नहीं, पूरे दिन। और सूर्यास्त के समय वो घर लौट के आते थे जरा विश्राम करके, फिर छोटा गोपाल, वेंकट भट्ट और उनके भाई प्रबोधानंद जी ये रात भर बैठकर कृष्ण लीला पर चर्चा करते थे। ये मत पूछिए सोते कभी थे, वो सोते नहीं थे, भगवान की ऐसी कृपा रही उनके ऊपर कि वो दिन भर भी नाचते रहे रात भर भी सुनते रहे। हम थोड़ा नाचेंगे तो कथा में फिर सो जाते हैं, लेकिन ये दिव्य लोगों की बातें कर रहे हैं, हम दिव्य लोगों की चर्चा कर रहे हैं। तो उस घर में मुझे 5 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ 2005 की यात्रा में, वो भी ऐसे एक्सीडेंटली। ऐसा उस घर में परम पूज्य राधानाथ महाराज भी रुके हुए हैं, उस घर में उनके संप्रदाय के बड़े आचार्य भी एकांत भजन कर चुके हैं, उस घर में गौशाला भी है, उस घर में कुआं भी है, उस घर में वो हॉल है जिसमें एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बैठकर वहाँ पर चर्चा करते थे, उस घर में एक देवघर भी है जहाँ पर रंगनाथ जी का एक छोटा विग्रह है और उसकी पूजा भी होती है। तो मैं कुछ देर तक विश्वास ही नहीं कर पाया कि उसी घर में मैंने 5 दिन निवास किया। तो मुझे जब अंदर भेजा गया तो मैं बार बार पूछता रहा कि इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। तो उन्होंने कहा हाँ, बाय द मैटर ऑफ फैक्ट, हाँ वेंकट भट्ट जी का घर है ये पुरातन घर, उन्होंने मेंटेन करके रखा है अभी भी। एनीवेज, तो वहाँ पर 4 महीने चैतन्य महाप्रभु का प्रेममय संग प्राप्त करने के पश्चात, जब चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास्य का कालावधि समाप्त करके जब जाने का समय निकला, वेंकट भट्ट उनसे इतने आसक्त हो गए थे कि उनके पीछे भी चलने लगे। ऐसे माता पिता को कुछ कहना पूछना कुछ इतने भाव में थे कि जाने लगे उनके पीछे। तो स्वयं महाप्रभु चैतन्य ने उनको बताया कि अभी आपको नहीं आना है मेरे साथ, अभी आपको माता पिता की सेवा करनी है। जब माता पिता का शरीर समाप्त हो जाएगा तो फिर आप वृंदावन में चले जाना और रूप सनातन के आश्रय में वहां रहना। तो 11 साल की उम्र में इतनी प्रगल्भता थी उनके अंदर, जिद नहीं किया, हटने किया, रोते रहे कि मुझे आना है, मुझे आना है। तुरंत आज्ञा पालन के भाव से पीछे आ गए और 11 साल की उम्र से कई साल, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन से साल में उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया और वो कब चले, मतलब 11 साल की उम्र के बाद बहुत साल हो गए होंगे, कम से कम 30-40 साल तो हो गए होंगे। तो वहां पर आज्ञा पालन के महिमा का वर्णन आता है कि आज्ञा पालन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज्ञा पालन में ही सारी कृपा समाविष्ट होती है। यू रिसीव ऑल द मर्सी इन द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ श्री गुरुदेव। तो बहुत और एक बात यहां पर सिद्ध होती है कि माता पिता के द्वारा हमें शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर, जिस मनुष्य शरीर के वजह से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए माता पिता का ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, उन्होंने संन्यास लिया फिर भी माता की इच्छा को उन्होंने नहीं टाला। उन्होंने कहा कि नहीं, आप संन्यास ले, ठीक है, आप मेरे पास ही रहो, मैं कभी भी आपको मिल सकती हूँ। तो जगन्नाथपुरी में रहे, पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया चले गए। तो महाप्रभु चैतन्य, प्रभु रामचंद्र सब हमें बता रहे हैं कि माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम कभी टाल नहीं सकते हैं। हमारे वैराग्य के बहाने, हमारे समर्पण के बहाने, किसी भी तरह से हम उसको टाल नहीं सकते हैं। तो फिर माता पिता की पूरा सेवा करने के पश्चात वो वृंदावन चले गए रूप सनातन गोस्वामी के आश्रय में। और वहाँ पर उनका चैतन्य महाप्रभु का विरह बढ़ता गया। उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं, लेकिन आदेश क्या था, वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी के शरण में जाना है। मन कह रहा है महाप्रभु को मिलना है, आज्ञा कह रही है कि वृंदावन जाना है। तो कहाँ गए वो, जगन्नाथपुरी नहीं गए, वृंदावन गए। अनदर इम्पोर्टेंट लेसन, विरह सहन करते हुए महाप्रभु जी से उनसे आसक्ति थी, रूप सनातन को तो देखा भी नहीं था। 4 महीने का संघ किसका किया था, चैतन्य महाप्रभु को किया था, फिर भी वृंदावन गए। लेकिन वो विरह बढ़ता गया तो उसकी खबर भी पहुंच गई जगन्नाथपुरी में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हैं और आपके लिए रो रहे हैं, हाँ, बर्निंग इन सेपरेशन। तो महाप्रभु ने अपना बैठने का आसन, उसको योगपट्ट कहते हैं, और बहिर्वास यानी कोपिन, ये उनको भेंट में भेजा महाप्रसादी। तो कहते हैं महाप्रभु जी का जो बहिर्वस्त्र था वो सर पे बांधते थे और उस आसन का पूजन करते थे। कहते हैं उससे उनका जो विरह का अग्नि था वो थोड़ा शांत हो गया, ऐसा नहीं कि पूरा शांत हो गया, फिर भी तड़पते रहे वो। तो एक दिन स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप गंडकी नदी जाओ नेपाल में, वहां पर मेरा दर्शन होगा आपको। तो वहां पर उस समय तो क्या गाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ नहीं था, पैदल चले गए वृंदावन से नेपाल में। आप में से कोई नेपाल गया है क्या? हाँ, बहुत दूर है नेपाल, बम्बई से जाने के लिए ना 3 दिन लगते हैं ट्रेन बदल के जाने के लिए, बहुत दूर है। तो वो पैदल चले गए और काठमांडू जहाँ पर है ना पशुपतिनाथ, वहाँ से भी वो गंडक नदी बहुत दूर है, पोखरा क्षेत्र में है। और पोखरा पहुँचने के बाद में आपको पहाड़ों में जाना पड़ता है कई घंटों तक, और फिर वो पहाड़ में से आपको काली गंडक की नदी का दर्शन होता है। मैं गया हूँ, मुझे पता है। तो वो काली गंडी तक, गंडकी तक पहुँचे, और काली गंडकी में पहुँचने के बाद जब वो स्नान करने उतरे तो स्नान करते समय वो स्नान होता है, उसके बाद में हम लोग कमंडल में जल लेकर उसको फिर अर्घ्य अर्पण करते हैं सूर्य को, नदी को जैसे। तो जब कमंडल में जल भरा तो आमतौर पर जब पत्थर होते हैं ना पानी में, नदी में, तो कहाँ रहते हैं पत्थर, वो नीचे रहते, तल पे रहते ना, कोई तैरते नहीं पत्थर कभी। तो फिर भी इनके कमंडल में बहुत सारी शिलाएं प्रवेश की, तो उनको लगा कि बाय मिस्टेक होगा, तो उन्होंने वापस डाल दिया। दूसरी बार जल लिया तो वापस शिलाएं प्रकट हो गई उसके अंदर। और गंडकी नदी में ऐसा एक महात्म्य है कि गंडकी नदी के पार जो पहाड़ है ना, उसमें से जो जो पत्थर ऐसे फिसल के गिरते ना, वो पत्थर गंडकी नदी के, काली गंडकी नदी के स्पर्श से एक वज्र कीट होता है उसके अंदर, उनके संपर्क से उनका रूपांतर शालिग्राम में होता है। ये एक प्रकृति का चमत्कार है। जो जो पत्थर फिसलते हैं वो नीचे जाकर शालिग्राम बन जाते हैं। फिर वो वज्र कीट नाम का जो कीटक है उसको अंदर से उसको डिजाइन बनाता है, सुदर्शन चक्र का, गोपाल जो भी कुछ है अंदर की, जितने जो महीन डिजाइन होते हैं ना, वो कीटक बनाता है। इस प्रकार से दिव्य शालिग्राम शिला का निर्माण होता है वहां पर। तो वो शालिग्राम शिलाएं उनके कमंडल में प्रवेश कर रही थी। तीसरी बार जब 12 शिलाएं प्रवेश कर गई उनके कमंडल में, उस समय आकाशवाणी हुई कि ये मैं हूं, जैसे मैंने कहा था, ये शिलाएं आप वृंदावन ले जाइए और इनका पूजन कीजिए, इस रूप में मैं आपके साथ में आ रहा हूं। तो फिर उन्होंने वो शिलाएं, 12 शिलाएं ले ली। उसमें से एक शिला का नाम हमें पता है, वो है दामोदर शिला, प्रमुख शिला थी उसके अंदर। वृंदावन लेके आए और वृंदावन लेके आने के बाद उनका पूजन शुरू किया। जमुना जल, तुलसी और चंदन, इनसे बहुत भक्ति भाव से उनका पूजन शुरू किया। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन एक दिन, एक उसके बाद में फिर रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद जी को प्रकट किया, मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी ने प्राप्त किया, गोपीनाथ जी को मधु पंडित जी ने प्रकट करवाया, और तीनों ठाकुर को, तीनों भक्त लोग बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाते थे, बहुत उनका श्रृंगार प्रेम सेवा में व्यक्त करते थे, क्योंकि उनके सब अंग थे बहुत सारे, तो सुंदर सेवा करते थे, श्रृंगार की, भोजन की। उनकी आंखों का दर्शन है, मुख का दर्शन है, हाथों का दर्शन है, मुरली का दर्शन है, चरण कमल का दर्शन है, सब कुछ एकदम क्लियर था। तो इनको भी लगता था कि हमारे ठाकुर तो कैसे बोलते हैं, झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे कड़ी पकौड़ी फोरियो ऐसे लिपटियो चंदन। मतलब चंदन लगाने के बाद में बोलते हैं कि ये कड़ी में कसी पकौड़ी दिखती है वैसे दिखते हैं। हाँ, और पता नहीं देखते कहाँ से, आंखें कहाँ है पता नहीं, सोते कहाँ है, उनके सर किस तरफ है, पैर किस तरफ है, चरण कहाँ है पता नहीं, खाते कहाँ से हैं पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, गोल मटोल कड़ी के पकौड़ी जैसे दिखते हैं, ऐसे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचते हैं। उसमें से एक बड़ा धनी व्यक्ति आता है। वो धनी व्यक्ति क्या करता है, उसने ना वृंदावन के सभी विग्रहों के लिए, सभी आचार्यों के लिए बहुत सारा श्रृंगार लाया है, वस्त्र है, अलंकार है, मुरली है, पादुकाएं हैं, बहुत सारे सेट्स हैं अलंकारों के और वस्त्रों के, वो सबको बांटते बांटते आ रहे हैं। मदन मोहन जी को गोस्वामी जी को दे दिया, रूप गोस्वामी को गोविंद जी के लिए दे दिया, मधु पंडित को दे दिया, और फिर इनके पास भी आ गए। और ये कहते हैं मैं क्या करूं इनको लेके, हमारे ठाकुर को तो अंग ही नहीं है, ना हाथ है, ना पैर है, ना शरीर है, क्या पहनाऊं, कहाँ पहनाऊं, केवल मुरली रखता हूँ और मुकुट पहना, तो बाकी सब मुझे पता नहीं क्या कहाँ है उनका। तो कहते नहीं, मैंने लाया तो है आपके लिए, आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं करके फिर वो, उसको बुरा न लगे, इतनी श्रद्धा से आया तो उससे वो अलंकार ले लेते हैं। और उस दिन से ज्यादा ही उनको भाव मन में होता है कि क्या करूं क्या करूं, इनके तो अंग ही नहीं है, अंग हो गए तो मैं सेवा करता इनकी। और ऐसे विचार करते करते एक दिन नरसिम्हा चतुर्दशी आई। कौन सी? वैशाख शुद्ध चतुर्दशी, साल मुझे अभी याद नहीं बराबर से, कहते कि कुछ 478 ईयर्स अभी पूरे हुए, ये जो था पिछले साल का वो 478 था, तो आप तो गिनती कर सकते हो। तो कहाँ से आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन हमारे सभी गौड़ीय मंदिरों में ऐसी प्रथा होती है कि हम भागवत खोलते हैं और पूरा सातवां स्कंद जो है वो हो सके उतनी कथा पढ़ने का प्रयास करते हैं, और नरसिंह भगवान का आविर्भाव के विषय में चर्चा करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने मंदिर में अपने अनुयायियों के साथ भागवत का पठन किया, पूरा लीला वर्णन किया। तो जब नरसिंह भगवान प्रहलाद के एक अंगुली निर्देश के साथ खंबा तोड़कर बाहर आए, ये जब वर्णन हुआ ना, तो उनके मन में ऐसा विचार चमक गया कि अगर वो एक भक्त के उंगली निर्देश करने से तत्क्षण प्रकट हो सकते हैं, तो इसमें से क्यों नहीं प्रकट हो सकते हैं? हमारे शालिग्राम जी, गोल मटोल जी बैठे हुए हैं, उनमें से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? ऐसा विचार मन में आया, कथा समाप्त हुई, सब कुछ प्रहलाद का उपदेश हुआ, उनका आदान प्रदान हुआ, ग्रंथ बंद हो गया, भगवान को शयन कराया, उत्सव समाप्त हो गया। और रात को शयन कराया तो 12 शिलाएं हैं ना, शयन कैसे करते हैं, उनको एक रुमाल रखते हैं उनके ऊपर और उनको विनती करते हैं, मुकुट उतारते हैं, मुरली निकालते हैं और उनको शयन कराते हैं। सबको शयन कराया, 12 रुमाल पहने और सो गए रात को। जब उठे अगले दिन, उस दिन क्या था, वैशाख पूर्णिमा, तो वो जो एक शिला थी दामोदर की, उसके ऊपर का जो वस्त्र था ना, वो ऐसे ऊपर आ गया था, ऐसे जैसे कोई अंदर से कोई डंडी रखा हो या ऐसे खड़ा कर दिया हो। तो वो बहुत उत्सुक हुए, जल झट से जमुना में जाकर, क्योंकि मंदिर जमुना जी के पास ही है, वो जो स्थान है ना जहाँ पर वो शालिग्राम की सेवा करते थे ना, वो आज के मंदिर के बिल्कुल बगल में है, उनकी समाधि उसके आगे है, समाधि और मंदिर के बीच में एक जगह है, एक बड़ा वृक्ष है, उसमें एक सिंहासन है, उसमें वो शालिग्राम की सेवा करते थे। वहाँ से जमुना जी बहुत पास में है, 2 मिनट के अंतर पे। झट से जाके स्नान किया, शुद्ध होकर, शुचिर्भूत होकर, तिलक लगाकर उन्होंने उत्थापन किया भागवत जी को। क्या देखते हैं, दामोदर नाम की शिला के अग्रभाग से पूरा 12 उंगली ऊंची का, ऊंचाई का विग्रह उसमें से प्रकट हो गया था। बहुत सुंदर और महीन उनके अंग थे। और कैसे वर्णन किया है देखो, त्रिभंगी स्वरूप में खड़े थे, मुरली बजा रहे थे और गोपाल भट्ट जी को बड़े प्रेम से निहार रहे थे और स्मित हास्य कर रहे थे, जैसे मानो कह रहे हैं, तुमने कहा था ना नहीं आ सकते क्या, देखो मैं आ गया, अभी मैं वस्त्र पहना हूं, श्रृंगार करो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, तो बड़ा चमत्कार हो गया ना पूरा। तो उन्होंने झट से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबको बुलाया ये चमत्कार दिखाने के लिए। रूप गोस्वामी सब सनातन गोस्वामी भागवा के आए और रूप गोस्वामी बहुत निहारा उनको, और निहारते ही कह दिया कि इनके चरण कमल जो है ठीक मदन मोहन की तरह है, इनका वक्षस्थल जो है वो गोविंद जी की तरह है, नहीं इनका वक्षस्थल गोपीनाथ की तरह है, इनका मुख कमल जो है गोविंद जी की तरह है। तो उन्होंने तुरंत उनका नामकरण किया, राधा रमन, बोलो राधा रमन भगवान की। तो इनका आविर्भाव ब्रह्मा मुहूर्त में हुआ है ऐसे मानते हैं, इसलिए उनका अभिषेक जो है ना वो सुबह 5 बजे होता है, बहुत सुंदर। गर्मी के मौसम में उनका आविर्भाव हुआ है तो 1500 लीटर के आसपास उनका अभिषेक होता है हर साल, और 1-2 घंटे के अंदर उसको बांट देते, क्योंकि वो आप रखेंगे तो गर्मी में पूरा उसका दही हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, तो इतना दुर्लभ होता है वो। आप उस दिन वहां रहेंगे तो आपको चरणामृत मिलेगा। तो हमारा कई बार ऐसा भाग्य रहा है कि राधा रमन के आविर्भाव के दिवस हम यात्रा लेकर वहां पर गए और वहीं पर हमने शायद सैकड़ों व्यंजनों का महाप्रसाद लिया है, सैकड़ों व्यंजनों का, मतलब कितने व्यंजन थे वो गिनती नहीं कर सकते। बीच में उड़ गए, फिर हम लोग कोटा फुल हो गया तो बोला अभी और भी है, बोला नहीं अभी नहीं खा सकते, अभी पेट भर गया। राधा रमन जी बहुत सुंदर, उनके नेत्र, उनके शरीर के अंग बिल्कुल शालिग्राम जैसे होते ना, उसी के है वो, चमकदार काला रंग, काला रंग है लेकिन निस्तेज नहीं है, बहुत तेज तेज वाला काला रंग है उनका। और शिला भी उसके पीछे हैं, उनके उसके आगे से ये प्रकट हुए हैं। और अभी हाथ पकड़े आप, एक चार उंगली पड़ी ऐसे, उसके ऊपर 4 उंगली पड़ी, हाँ इतने उनकी ऊंचाई है, 12 उंगली है ना, और उसी में वो सुंदर सुंदर नाखून तक महीन अंग उनके विकसित हुए हैं, बहुत सुंदर। और थोड़ा सा बताता हूँ राधा रमन जी के बारे में, उनकी विशेषता है कि राधा रमन जी कभी भी पहना हुआ, एक बार पहना हुआ श्रृंगार दोबारा नहीं पहनते, नेवर, हाँ उनकी 17-18 ड्रेस हमेशा रोज तैयार रहते हैं। और गोस्वामी जो सेवा करते ना, उनका ऐसा कहना है कि वो कैसे उनको पहनाते हैं, वो सारे भगवान बहुत छोटे से हैं ना, तो उनके वस्त्र भी बहुत छोटे से इकट्ठा होकर बन जाते हैं, तो ऐसे सब सेट उनके सामने रखते हैं और ऐसे एक उठाकर दिखाते हैं, ऐसे उनको ऐसे दिखाते हैं, तो कैसे समझता है उनको पहनना है कि नहीं है, कहते हैं वो दांत दिखाते हैं जब उनको वो वस्त्र पसंद आता है। इसलिए आपने कभी कभी राधा रमन जी के चित्रपट देखे होंगे ना, तो किस किस में आपको दांत दिखाई पड़ेंगे, सब में नहीं दिखाई पड़ेंगे, दांत हैं उनके और वो निश्चित रूप से हमने कई लोगों ने देखे हुए, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो 17-18 ड्रेस है, समझा आपने, एक दिखाया, दो दिखाया, तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया, और उनको जो पहनना है वो सामने किया, तुरंत दांत दिखाते हैं, जब दांत दिखाते हैं दिखते हैं तो वो ड्रेस उनको पहनाते हैं, और वो ड्रेस उसी दिन किसी को महाप्रसाद के रूप में दे देते हैं या तो रख लेते हैं, दोबारा नहीं पहनते हैं। एक बार एक बुढ़िया, गरीब बुढ़िया आई थी, उसने एक सफ़ेद रंग के सूती वस्त्र बनाए थे ठाकुर जी के लिए। तो गोसाई ने कहा, अरे इतने सारे रंग बिरंगी चमकीले खड़े बड़े लगाए हुए महंगे ड्रेस हैं, तो ठाकुर जी कैसे तुम्हारा ड्रेस पहनेंगे? तो बोले, कोई बात नहीं, नहीं पहनने दो, उनको दिखाओ तो सही आप। तो उस दिन 17-18-20 ड्रेस थे, सब देखते, किसी को भी दांत नहीं दिखाया। और पुजारी को लगा ये कौन पहनने वाला है, तो भी सब खत्म हो गए, तो वो उसको दिखाना पड़ा। जैसे ही सफ़ेद रंग का कपड़ा दिखाया ना, उनको दांत दिखाए उन्होंने, और एक ही बार पूरे इतिहास में उनको सूती कपड़ा पहना है, बिल्कुल कोई जरी नहीं, कुछ नहीं, उसके अंदर कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि राधा रमन जी वो ऐश्वर्य के भूखे नहीं है, वो प्रेम के भूखे हैं। तो ऐसे बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं राधा रमन जी की। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन जी के आविर्भाव के दिवस पर बहुत बड़ा उत्सव मनाने का योजना किया, क्योंकि उनने कुछ सोचा था और वो होते हुए नजर आया ना उनके सामने, कुछ ही दिनों में हुआ वो, ऐसा नहीं कि बहुत सालों के बाद में हुआ। ये अलंकार प्राप्त होने के कुछ ही दिनों के बाद में ये सब नरसिंह चतुर्दशी और पूर्णिमा का दिन आया था, तो उनको लगा कि बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए। तो मार्केट में गए और बनिया से उन्होंने लोन लिया, उन्होंने कहा कि सामान लिया और पैसे भी लिए, और कहा कि मैं 15 दिन में आपको लौटा दूंगा। और राधा रमन जी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली वृंदावन में, बहुत लंबी, और उसमें उन्होंने शोभा यात्रा निकाली, फिर अभिषेक किया, फिर ठाकुर जी को भोग लगाए, बहुत डेकोरेशन किया, बहुत लोगों को प्रसाद खिलाया, कथा कीर्तन, बहुत आनंद किया, बहुत धूमधाम से उनका उत्सव मनाया। उसके अंदर एक बहुत अनोखी कथा है, उसके अंदर ऐसी है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजिरी के अवतार थे। तो गुण मंजिरी जो है ना, वो जो अष्ट सखियां हैं, एक एक अष्ट सखी की 3 मंजरियां सेविका होती है, एक एक, और एक एक मंजरी की 1-1 करोड़ सेविकाएं होती है। तो वैसे एक अष्ट सखी के साथ 3 करोड़ एक्चुअल गोपियां सेवा करती रहती है, अष्ट सखी और उनकी 3 मंजरियां और उनकी 1-1 करोड़, 3 करोड़, ऐसे 24 करोड़ हो गया ना, 24 करोड़। तो वो जो गुण मंजरी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वो कौन सी सखी की मंजरी है, लेकिन वो गुण मंजरी के जो 1 करोड़ गोपियां थी ना असिस्टेंट, उन्होंने भी जन्म लिया था उस समय वृंदावन में, नंदगांव में और कई जगह पर, लेकिन वो स्त्री शरीर में थे और ये पुरुष शरीर में थे, और उनका प्रेम था, चिरंतन प्रेम था। तो ऐसे वर्णन गोस्वामी बताते हैं वृंदावन के लोग कि वो युवा अवस्था में जो स्त्रियां थी वहां की उस समय की, उनको उनके पिताजी मना करते थे कि इतना युवा अवस्था का गोस्वामी है, हमारी लड़कियां उनके पीछे भाग रही है कथा सुनने के लिए, उनको मना करते थे। तो शोभा यात्रा हुई ना, तो कई लड़कियों को ऐसे कैद करके रखा, जाने नहीं दिया, कई लड़कियां छुप छुप के गई और उत्सव शोभा यात्रा देख के आई, कई लोगों को घर में डांट पड़ी, पिटाई भी हो गई। जैसे रासलीला में था ना, सभी पिताजियों ने और पति लोगों ने उनको रोका था, वैसे ही ये सिचुएशन यहाँ पर था। अभी वो तो पुरुष शरीर में लीला कर रहे हैं और ये सब स्त्री शरीर में जन्म लिए थे, उनको उनका आकर्षण तो था, प्रेम तो था, निरा अतिशय प्रेम था उनका। तो फिर ये सब उत्सव हुआ, बहुत धूमधाम से सब कुछ संपन्न हुआ, और 14 दिन में ना डोनेशन ही नहीं आया कुछ, और महाराज जी बैठे रहे, और 14वीं रात को हुआ, उनको नींद नहीं आया, कहा कि मैंने 15 दिन का वादा किया था, अभी 15 दिन में जाके मुझे देना है पैसा, मेरे पैसे तो है नहीं। तो रात भर रोते रहे, और 14 दिन के बाद में 15वें दिन सुबह सुबह ही गए दुकान में, और बनिया लोगों से बोले कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको वादा किया था, लेकिन मैं आपका धन नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे और कुछ समय की ज़रूरत है। तो सारे बनिया लोग क्या बोले, अरे महाराज जी चरणों में गिर गए उनके, अरे महाराज जी क्यों आप हमारा मजाक कर रहे हैं, कल ही तो आप आके सब पैसे दे के गए। बोले मैं तो कल नहीं आया, मैं तो रात भर रोता रहा। 3-4 दुकान में जब गए तो 5वें दुकान में उनको समझ में आया कि राधा रमन जी स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी का रूप धारण करके सबका कर्जा चुका के आए। यह भक्त और भगवान का प्रेम। और आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा, ये कथा हमने कहाँ सुनी, 2005 की यात्रा में, जहां पर जब हम वेंकट भट्ट के घर में निवास कर रहे थे, तो मुरली भट्टार जो वेंकट भट्ट के 17वें पीढ़ी के पुरोहित हैं वहाँ के, और नरमेश चंद्र गोस्वामी नंदगांव के गोस्वामी हैं, वो भी उस यात्रा में थे, हाँ, तो जिस जैसे मैं घर में रह रहा था, तो उधर मुझे पता नहीं था, मैं अपने अपने टाइम पे उठ गया और बाथरूम में जाने लगा तो सब यात्री आने लगे उधर, क्योंकि वो भी एक स्पॉट था लिस्ट में। तो अगले दिन से मैं वहां का पंडा बन गया। 5 बजे उठकर 6 बजे से लोग अपने अपने मर्जी से आते थे। दिन भर सबको घुमाना, इधर क्या है गौशाला, ये भगवान का विग्रह का सूर्य रंगनाथ सब बताता मैं। तो वैसे ही जाने के पहले, 2 दिन के पहले 4 बजे शाम को नंदन गांव के गोस्वामी रमेश चंद्र जी और मुरली भट्टार जी आए उधर, एक कोइंसिडेंस है, और मैं भी वहां था। तो उन्होंने कहा हमारे जो रंगनाथ जी है ना, बहुत कृपालु भगवान है। तो उन्होंने कहा था, कथा बताई कि कैसे एक बार रंगनाथ जी रामानुजाचार्य बने और ब्राह्मण को अनाज दे के आए, क्योंकि उस अनाज ब्राह्मण को रामानुजाचार्य ने वादा किया था, आप इतने कृश हो, इतने दुर्बल हो, मैं आपको अनाज की व्यवस्था करता हूँ, ऐसे बोले और बाकी लोगों को मिले और भूल गए और यात्रा में चले गए। 3 महीने बाद लौट के आए तो वो पतला सा ब्राह्मण था, तो हष्ट पुष्ट दिखाने लगा उनको, लेकिन उनको याद आ गई कि मैंने उसको वादा किया लेकिन अनाज नहीं पहुंचाया, मैंने किसी को बोला भी नहीं, निकल गया मैं सीधा। तो वो माफी मांगने गए, ब्राह्मण देव थोड़ा क्षमा करना मैं भूल गया था। बोले महाराज जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आपने दूसरे दिन हमको अनाज ला के दिया और नियमित रूप से वो आप ला के दे रहे हो। तब उनको भी ध्यान में आया कि रंगनाथ जी अपने भक्त का शब्द वचन पूर्ण करने के लिए रामानुजाचार्य का रूप धारण करके ब्राह्मण को अनाज दे के आया करते थे। तो ये कथा किसने बताई, मुरली भट्टार ने बताई। तो हमारे रमेश चंद्र गोस्वामी कहते हैं हमारे पास भी ये कथा है, तो उन्होंने ये कथा सुनाई जो मैंने आपको बताई कि राधा रमन जी भी गोपाल भट्ट गोस्वामी बने। हाँ, और ये अद्भुत भक्तों का संगम कहाँ हुआ, वेंकट भट्ट के घर में, एक मुरली भट्टार जो वेंकट भट्ट के वंशज। और ये कैसे, इनको क्यों प्रेम नंदगांव वालों को, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी नंदगांव में भी निवास करते हैं, संकेत वन में, उनकी भजन कुटी संकेत वन में है, जहाँ पर राक्षसथली है, झूलन है, जहाँ पर संकेत देवी का स्थान है, जहाँ भगवान राधा रानी को संकेत के लिए मिलते थे, जहाँ प्रथम बार गौचारण करने के लिए बड़ी गायों का भार जिम्मेदारी प्राप्त होने के बाद प्रथम बार उन्होंने संकेत वन में गौचारण किया था। वहाँ यशोदा माई का राधा रानी से मिलन हुआ था, वार्तालाप हुआ था, वहाँ पहली बार युवा अवस्था में कृष्ण भगवान ने राधा रानी को देखा था। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर हुई है। उस संकेत वन में गोपाल भट्ट जी का भजन कुटीर है और वहां पर वो भगवान की कथा करते थे, और वहां पर भी वो लड़कियां जो उनकी सखियां थी वो आने के लिए प्रयास करती थी, वहां पर भी उनके पेरेंट्स उनको रोकते थे। और कहते हैं कि नंदगांव वासियों के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत निवास किया है। अभी संकेत अलग है, लेकिन संकेत और बरसाना के बीच में, नंदगांव के बीच में संकेत है, तो दोनों उसको अपना मानते हैं, बरसाना भी अपना मानते हैं और नंदगांव भी अपना मानते हैं। तो ये उसका कहते हैं ब्रजवासी पंच है उसका, क्योंकि कथा जो होती है ना हमेशा उसमें ब्रजवासी जब कहते हैं उनका एक और एक पंच होता है हमेशा, समथिंग दे हैव स्पेशल विच वी डोंट नो। हाँ, तो इस प्रकार से बासठ साल तक गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी का सेवा किया, 62 ईयर्स। इसका मतलब 11 साल की उम्र में थे घर पे, फिर उसके बाद 30-40 साल उधर रहे, उसके बाद में वृंदावन गए, उसके बाद 62 साल, मतलब 100 साल के ऊपर जिए हो। उनका और एक स्थान है राधा कुंड के किनारे, उनकी भजन कुटी भी है राधा कुंड के बिल्कुल किनारे, वहाँ पर कोई गए आप, बहुत सुंदर रमणीक स्थान है, एकांत स्थान है, वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन का भजन किया है। और जब ये औरंगजेब का आक्रमण हुआ था, तो क्योंकि राधा रमन जी इतने से थे उनके, इसलिए कहते हैं कि उनको बिस्तर के नीचे छुपाया गया, तो वो वहीं रहे और वहीं उनको दोबारा वापस रखा गया। उसके बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े बुद्धिमान थे, कहते हैं कि उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती से शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया। क्या क्या सीखा, व्याकरण सीखा, वेदांत सीखा, अलंकार सीखा, जितने भी शास्त्र के प्रकार है ना, उस सारे प्रकारों का अध्ययन, वेदांत के प्रकांड पंडित थे प्रबोधानंद जी, और वृंदावन के बहुत फैनेटिक प्रेमी थे वो, वृंदावन महिमामृत राधा सुधा निधि लिखने वाले बहुत श्रेष्ठ आचार्य थे, जिनकी समाधि कालियाघाट के पीछे है। तो उनके द्वारा वृंदावन में उनको बहुत सारा ज्ञान शिक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद में उन्होंने, उनके एक प्रमुख शिष्य थे, बहुत विरक्त संत थे, गोपीनाथ दास जी, और गोपीनाथ दास जी के एक गृहस्थ छोटे भाई थे जिनका नाम था दामोदर दास जी। इन दामोदर दास जी को उन्होंने दीक्षित किया और पूरी ट्रेनिंग दी डीटी वर्शिप की, और उनको पता था कि भविष्य में ये जो सेवा है वो गृहस्थों को करनी चाहिए। तो दामोदर दास गृहस्थ थे, तो आज जितने भी गोस्वामी हैं वो दामोदर दास जी के वंशज हैं। वो सारी व्यवस्था और वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डीटी वर्शिप वो सब उन्होंने उस समय से प्रस्थापित किया। हमारे प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अगर आपको सही रूप में अर्च विग्रह पद्धति अगर देखना है आदर्श, तो आप राधारमण मंदिर जाइए। आज भी उनका, क्योंकि वो गौड़ीय संप्रदाय है, बिल्कुल बोनाफाइड है, और उनका भाव जो है वो वैसे ही है जैसे हमारे संप्रदाय का है, हमारे ब्रांच का है। तो प्रभुपाद जी भी कहते थे कि राधारमण जी का जी वर्शिप वो स्टैंडर्ड वर्शिप है। और वो कहते हैं अगर आप वृंदावन में जाते हो और कभी आपको बहुत कम समय रहेगा और आपको थोड़े समय में बहुत कुछ करना है, तो आप राधारमण मंदिर में जाइए, आप गोपीनाथ गोविंद जी मदन मोहन जी सबका दर्शन एक साथ में कर सकते हैं, ऐसा है। तो राधारमण भगवान की जय हो, गोपाल भट्ट जी महाराज की जय हो। छह गोस्वामी से सबसे छोटे उम्र के गोपाल भट्ट जी थे, दी यंगेस्ट ऑफ ऑल, और एक ही साउथ इंडियन गोस्वामी थे श्रीरंगम की। और कैसा उनका था कि उनका जो परवरिश था वो ऐश्वर्य भाव में हुआ, और आगे का उनका जो भक्ति का मार्ग का जो यात्रा उनकी हुई वो माधुर्य रस में हुई, है ना। मतलब एक होता है ऐश्वर्य, एक होता है माधुर्य। माधुर्य में भगवान की भगवान के रूप में पहचान नहीं होती है। तो उधर उनके सामने ही चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन आता है ना, वेंकट भट्ट का हास परिहास कैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया उनके लक्ष्मी, और प्रश्न किया कि आपकी लक्ष्मी देवी इतनी पतिव्रता नारी है, हमेशा विष्णु के चरणों में रहती है, और वो कैसे कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनके चरण छोड़कर कैसे भागती है रास में प्रवेश करने के लिए, कहाँ जाती है उसकी पतिव्रता उस समय, पतिव्रत्य कहाँ जाता है। तो बहुत लंबा उनका हास्य विनोद किया है, फिर उनको बहुत गहराई से समझाया है कि कैसे लक्ष्मी का पातिवृत्य बिल्कुल भंग नहीं होता है जब वो विष्णु के चरण छोड़कर कृष्ण के रास लीला में प्रवेश करने का प्रयास करती है, तो वो उन्हीं ठाकुर को चाहती है, उनके ठाकुर के अलग रूप में उनकी सेवा करना चाहती है, तो पातिवृत्य को भंग करके वो नहीं जा रही रासलीला में प्रवेश करने के लिए। तो ये सुंदर चर्चा जो है ये गोपाल के सामने हुई थी जब गोपाल जी बालक थे, और ये माधुरी ऐश्वर्य का जो द्वंद्व है, बहुत प्रेममयी द्वंद्व, उसका साक्षी थे वो गोपाल जी। तो एक तरह से कभी कभी प्रश्न आता है कि जो रंगनाथ जी के एस्टैब्लिश्ड पुरोहित वंश से हैं उनको चैतन्य महाप्रभु ने कैसे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, एक तरह से कैसे अपना मार्ग छोड़कर अपने मार्ग में लाया उनको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं किया, गोपाल भट्ट जी हृदय से उनके लिए आकर्षित हुए थे और उनकी खुद की इच्छा थी कि इनके पीछे चले जाएं। तो प्रेम माधुर्य आंदोलन के वो प्रणेता थे ना चैतन्य महाप्रभु, तो उनके पीछे मोहित होकर चले गए। और उनका गोपाल भट्ट गोस्वामी का और एक इतिहास आता है कि सनातन गोस्वामी ने जब हरिभक्ति विलास ग्रंथ लिखा तो उन्होंने गोपाल भट्ट जी को विनती की कि आपके नाम से इसको प्रस्तुत करो आप, क्योंकि सनातन गोस्वामी जब भी वृंदावन आए तो सब ब्रजवासी प्रकांड पंडित जानते थे कि ये तो है तो ब्राह्मण गौड़ सरस्वत, लेकिन उन्होंने बहुत देर तक मुसलमान राजा की सेवा की है, तो उनको इतना परफेक्ट नहीं मानते थे वो। तो वो सोशल सिचुएशन गोस्वामी जी जानते थे सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा कि आप तो बिल्कुल प्रस्थापित ब्राह्मण पुरोहित हो रंगनाथ जी के, आपका स्थान बहुत श्रेष्ठ है, तो मेरा ग्रंथ अगर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा तो लोग उसको पढ़ेंगे। तो इस भावना से उन्होंने अपना नाम दिया, श्री चोर गोपीनाथ जी उन्होंने अपना नाम दिया, और वो उनके नाम से ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। और उसके बाद में जब चैतन्य चरितामृत लिखने का समय आया तो वो लिखा गया राधा कुंड के किनारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, और तब वो सबका आशीर्वाद लेने गए थे, तो इन्होंने भी उनका आशीर्वाद दिया, लेकिन कहा मैं आशीर्वाद केवल एक कंडीशन पे दूंगा, एक शर्त पर, कि आप मेरा नाम ग्रंथ में कहीं लिखेंगे नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में शायद अभी एक रेफरेंस देखा, लेकिन वो शायद छोटा सा अनुल्लेख होगा उसका, लेकिन उसमें चैतन्य चरितामृत में इतनी लीला होने के बाद भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत नम्र थे, बहुत ही प्रसिद्धि परांगमुख थे, और राधारमण जी जैसे सुंदर ठाकुर जी को उन्होंने निर्माण किया। और उनके राधारमण जी जो हैं वो प्रसिद्ध किसके लिए हैं, तत्क्षण प्रार्थना को प्रतिसाद देने के लिए, टू गिव रिस्पॉन्स इंस्टेंटली टू द प्रेयर. और वही राधारमण जी जो है उनके लिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज ने एक दिन ऐसे डेस्परेट कंडीशन में प्रार्थना किया था कि यू सेव मी प्लीज, और उन्होंने ऐसा लीला रचाया कि महाराज जी आज भी भारत में हैं, नहीं तो उस समय भारत के परमानेंटली बाहर हो चुके होते, उनका वीजा वीजा सब खत्म हो चुका था. आपने अनोखा सफर में पढ़ा होगा लीला. तो राधा रमन जी ये हर तरफ से सब भक्तों की तत्क्षण इच्छा पूरी करने वाले हैं, बस प्रार्थना करने वाले को कमी है, पूरी करने वाले वहाँ खड़े हैं हमेशा. जैसे राधा रमन जी को और गोपाल भट्ट गोस्वामी को हम वंदन करते हैं हृदय से, और ये प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में जो भगवान के प्रति तीव्र प्रेम भाव था, साथ साथ विरक्ति भी थी और भगवान के लिए बहुत ही गहरा प्रेम का भाव था, उनके ही वजह से शालिग्राम शिला गोल मटोल स्थिति से वो सुंदर विग्रह उत्पन्न हो गया. और ऐसा विग्रह उत्पन्न हुआ जो एक ही विग्रह में तीन विग्रहों के सारे चिन्ह उनके अंदर प्रकाशित हुए. ऐसे अद्भुत विग्रह प्रकट करने का जो सौभाग्य उनको प्राप्त है, इसलिए हम उनको बार बार वंदन करते हैं. चलो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की, श्री राधा रमण भगवान की जय हो. श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो. आज हम जिस स्थिति में यहां बैठे हैं ना, वो पूरे यूनिवर्स में एक अनोखी स्थिति है, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं, उसका विचार नहीं कर सकते कि यार ऐसी कोई और स्थिति हो सकती है क्या. वृंदावन में आप जाएंगे और द्वादश आदित्य टील पे जाएंगे तो आपको ये सीन नहीं मिलेगा. अगर आप करौली जाएंगे तो भी आपको ये सीन नहीं मिलेगा. दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ भगवान है तो वो मंदिर नहीं है, एक तरफ मंदिर है तो भगवान नहीं है. हाँ, यहाँ पे दोनों है. ये बहुत अद्भुत स्थिति है. और ये हम लोग अभी कैसा है ना, जो हमारे जीवन में होता है ना हमारे आंखों के सामने, तो हम उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते. समझो अभी, समझो हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु के समय पे थे, समझो तो चैतन्य महाप्रभु के समय पर चैतन्य महाप्रभु का द्वेष करने वाले लोग भी थे. ये मत समझना कि सब लोग उनके अनुयायी थे. उस समय मांसाहार करने वाले लोग भी थे, शराब पीने वाले लोग भी थे, वेश्यागमन करने वाले भी लोग थे. तो भगवान जब कृष्ण यहां पर थे तो दुर्योधन भी था उनका द्वेष करने वाला, उनको चेटुक कर कहता था वो, इज अ मैजिशियन. हाँ, कोई ऐसी विद्या जानता है आदमी, ये चेटुक आदमी है, ऐसा कहता था, उसको अरेस्ट करो. तो साक्षात भगवान भी जब दुनिया में होते हैं तभी सब लोग भगवान के अनुयायी नहीं होते हैं. तो शिशुपाल भी था, दंतवक्र भी था, कितने सारे लोग थे भगवान के द्वेषी थे. जो भगवान भीष्मदेव लोगों जैसे लोगों के अंदर प्रेम का स्फुरण करते थे, और वो एक ही सभा में दुर्योधन कर्ण के मन में असूया उत्पन्न होती थी उनको देखकर, कृष्ण को देखकर बहुत ज्यादा असूया होती थी उनको. तो वैसे ही हमारी स्थिति है कि हमारे जीवन काल में ये चमत्कार हुआ है. यहाँ पर हमारे जीवन काल में मदन मोहन जी फिर लौट कर अपने मंदिर में आए हैं और अपने मंदिर में निवास करेंगे. जब तक हम जीवित हैं तब तक तो ये रहेंगे रहेंगे, और हमारे बाद में कई पीढ़ियों तक रहेंगे जब इनकी इच्छा तब तक रहेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा से वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं. और हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन में हम जब तक सेंसेस में अभी तक सिनाइल नहीं हो गए इतने कि हमको कुछ समझता नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है कुछ. वैसे मेरी माता जो है उस कंडीशन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको, कहाँ है, किसी को पहचानती नहीं है, खुद को भी नाम नहीं याद है, ऐसे एक भयंकर अवस्था वृद्धावस्था में होती है. तो वैसे भी हमारी अवस्था नहीं, हमारी अवस्था बहुत अभी सतर्क अवस्था है. हमारी इंद्रियां अभी अपनी जगह पर है, अपना काम कर रही है, सब समझ रहे हैं हम. और हमारी आंखों के सामने हमारे जीवन काल में ये चमत्कार हुआ है कि वैसा ही मंदिर जो सनातन गोस्वामी ने उस रामचंद्र कपूर से बंधवाया था, उसी आकार का, उसी ऊंचाई का, उसी वजन का, उसी प्रकार का मंदिर यहाँ बना हुआ है. वे रिकॉर्ड टाइम में बना है. मैं उधर वो पत्थरकारों को मिला, वो दिन बैठा था तो ही, क्योंकि वो ब्रजभाषा बोल रहे थे अपने, मैं समझ गया कि मैं आप कहाँ से हो, तो बोले मथुरा से हैं हम लोग. तो बोले आप बड़े बड़े भाग्यशाली हो कि आप यहाँ पर आकर देख रहे हो. हाँ, यहाँ पर कोई पंडागिरी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आराम का वातावरण है. ठाकुर जी बड़े प्रेम से विराज हैं यहाँ, विराजमान है यहाँ पर. तो उन्होंने कहा कि हमने ये मंदिर बनाया, वो ये मंदिर. उसके चार पाँच लोग मुझे मिले उधर, वो नंदीश्वर महादेव का निर्माण हो रहा है ना वहाँ पर, उसको वो उसका काम कर रहे थे पत्थर के ऊपर, और वो सारे मथुरा के गांव से हैं. उन्होंने कहा 6 महीने में बना दिया मंदिर इसको, हो सकता है 8 महीने में बनाया होगा, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में ये मंदिर खड़ा किया है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त के हृदय में जब कोई इच्छा प्रकट होती है और एक शुद्ध भक्त के हृदय में जब वृंदावन प्रकट होता है तो किस अद्भुत तरीके से वो बाह्य दृष्टि में प्रकट हो जाता है। हाउ इट मैनिफेस्ट एक्सटर्नली इज़ बाय द डिजायर ऑफ अ प्योर डिवोटी। समटाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स वी फेल टू ग्रैस्प द ग्रेविटी एंड द ग्लोरी ऑफ द सिचुएशन। हमारे एक कंडीशनिंग की वजह से हम उसका ग्लोरी समझ सकते नहीं हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु के समय सब नाच कर रहे हैं और भाव विवरों को रो रहे हैं सब लोग, तो हमको क्या लगता है काश मैं तभी वहां होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हो सकता है कि आप थे तभी, लेकिन तभी उतना लाभ नहीं लिया हम लोग ने, इसलिए वापस आ गए इधर। 500 साल के बाद में भी इधर ही जी रहे हैं। हो सकता है वी मे बी देयर। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं कि जैसे अगर हम वहां पर होंगे शायद उस समय पे, लेकिन उतना गंभीरता से महाप्रभु का आंदोलन नहीं लिया हमने। और अभी हम लोग इस समय है यहाँ पर जब वहां मदन मोहन जी का मंदिर और मदन मोहन जी का विग्रह यहाँ पर प्रकट हुआ है, हो सकता है अभी भी हम नहीं लेंगे गंभीरता से तो वापस आएंगे फिर। लेकिन सॉरी टू से आगे कोई भगवान का अवतार नहीं है, एक ही आएगा एंड में कल्कि सबका गर्दन काटने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी ना कई कृपाएं अनन्य होती है, अकारण होती है। वी डोंट नो व्हाई आई एम हियर एट दिस टाइम, जहां पर एक बहुत ही गौरवशाली घटना हो रही है और तब मैं इस विश्व में हूं, कितनी बड़ी बात है। देखो प्रभुपाद जी इस दुनिया में थे, जुहू में थे, वो कई साल तक थे। तब मैं 14 साल की उम्र तक था तब प्रभुपाद जी का शरीर समाप्त हो गया 77 में, लेकिन मेरा प्रभुपाद जी का मुलाकात नहीं हुआ। मैं तो प्रभा देवी में था, केवल 10 किलोमीटर दूर था वहां से। लेकिन इतने समय तक प्रभुपाद जी वहां रहे, उसी बंबई में रहे और मैं भी उसी बंबई में था, लेकिन हमारी मुलाकात का भाग्य नहीं था। उनके बाद में उनके पुस्तकों का परिचय, उनको केवल वीडियो में देखा है और उनके शिक्षाओं से जीवन परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रभुपाद जी थे उदय, तभी हम भी इस दुनिया में थे। तो ऐसे कई घटनाएं होती है, तो मैं खाली इतना ही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारी आंखों के सामने इस जीवन में हुआ है वो इस सदी का सबसे बड़ा चमत्कार है जो आपके सामने है। यहां तक कि जो मदन मोहन जी के पुजारी हैं वो भी स्वयं अचंभित है इस बात के लिए। जो स्वयं जब आए थे यहां पर, उन्होंने कहा कि मदन मोहन जी अभी घूम के आपके अपने घर पे लौट के आए हैं। जब वो ये बात कहते हैं ना, तो उसमें बहुत बड़ी गहराई है। यू टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी दे आर सेइंग इट कि नाउ वी आर हैप्पी टू सी मदन मोहन जी बैक होम। क्योंकि वो पहले वृंदावन में थे, वहां से फिर पहले राधा कुंड में गए, फिर उसके बाद में काम्यवन में गए। काम्यवन में अभी भी चंद्रमा का पूर्ण चंद्रमा, क्या नाम उसका, वो एक मंदिर है मदन मोहन जी का, जिसमें अभी वो पुष्टि मार्ग उनकी सेवा करते हैं, तो वो उसकी बाल के रूप में सेवा करते हैं। तो दिन भर वो सोते रहते हैं, एक आध आधा घंटा दर्शन देते हैं। पूर्ण चंद्रमा ऐसा कुछ नाम है उनका, वो काम्यवन में मंदिर है। इसका मतलब वहाँ से निकले राधा कुंड में रहे, वहाँ से निकले वहाँ पर काम्यवन में रहे, काम्यवन से निकले जयपुर गए, जयपुर से गए करौली गए, कितना स्थान बदली किया उन्होंने और आज जयपुर में विराजमान है। तो वो ठाकुर जी यहाँ पर अभी विराजमान है। और उन गोस्वामी ने उसका विरोध नहीं किया, उस पर टीका टिप्पणी नहीं किया, उन्हें अप्रूवल दिया हुआ है, दे आर वेरी हैप्पी। ये सबसे बड़ी बात है। वो गोस्वामी यहाँ कर आप पर टीका टिप्पणी कर सकते, वो विरोध कर सकते, ऐसा कैसे बना सकते आप यहाँ पर, वो तो केवल वहीं पर होना है, या तो वृंदावन में होना है करौली में होना है, आपको क्या अधिकार है, किसने आपको अधिकार दिया यहाँ बनाने का, ऐसे बोल सकते हैं। जगन्नाथपुरी के लोग बोलते कि नहीं कि आपको किसने अधिकार दिया विदेश में जाकर रथ यात्रा करने का, कोर्ट केस चल रहा है उसका, वो जगन्नाथपुरी में होना चाहिए, यहाँ का रिवाज है वो। आप दुनिया भर में प्रभुपाद जी ने क्यों किया उसको, विदेश में बम्बई में नागपाड़ा में विक्रोली में क्यों कर रहे हैं आप लोग, केस किया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने। वैसे ये भी कर सकते थे कि हाउ दे हैव मेड दिस अनबोनाफाइड टेम्पल हियर, बट उन्होंने हृदय से उसको अनुमति दिया और आशीर्वाद दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सारे हमारे जिंदगी में होते हुए चमत्कार हैं, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये विग्रह किसने बनाए, ये वज्रनाभ ने बनाए थे कृष्ण के आदेश के अनुसार। कृष्ण भगवान ने वज्रनाभ को आदेश दिया था कि 3 स्तर पे आपको धाम का जीर्णोद्धार करना है। जीर्णोद्धार नहीं कर सकते कि भगवान का धाम जीर्ण नहीं होता है कभी, लेकिन जो भी रेनोवेशन, जो भी उनको पुनर्स्थापना या जो भी करना था, उन्होंने कहा 3 स्तर पे आपको करना है। एक विग्रह स्थापन करना है, एक सर यानी जलाशय बनवाना है और मेंटेन भी करना है, और तीसरा वन विग्रह, सर और वन, इन तीन सर पर आपको धाम का पुनर्स्थापना करना है। तो उसमें विग्रह जो है उन्होंने तीन बनाए, उसमें पहला विग्रह बनाया और एक जगह लिखा है कि वो उषा देवी को दिखाया, एक जगह लिखा है कि उत्तरा देवी को दिखाया, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तब तक तो उत्तरा देवी भी चली गई थी, लेकिन अनिरुद्ध की पत्नी उषा देवी थी और वो बज्रनाभ की माता थी, उन्होंने अपनी माता को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इनके चरण कमल जो है साक्षात ठाकुर जी जैसे, तो वो मदन मोहन जी हुए और उनको उन्होंने स्थापन किया वृंदावन धाम में, फिर गोविंद जी को स्थापन किया, फिर गोपीनाथ जी को स्थापन किया, फिर कहते हैं कुछ समय के बाद में वो अंतर्धान हो गए, भगवान अपनी लीला के कारण प्रकट अप्रकट होते रहते हैं, और फिर वो कई सालों के बाद में अद्वैत आचार्य जब अद्वैत वट के नीचे बैठकर ध्यान तपस्या भजन कर रहे थे, तब महाप्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ था, चैतन्य महाप्रभु अभी तक अवतरित नहीं हुए थे, तब वो तो चैतन्य महाप्रभु से मुझे लगता है 35 साल बड़े हैं उम्र में, बड़े बुजुर्ग थे वो, महाप्रभु भी बहुत युवा अवस्था में थे, बड़े बुजुर्ग थे वो, तो वो उस चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले ब्रज में आकर एकांत भजन कर रहे थे द्वादश आदित्य टील के नीचे, वहां पर भूमि से उनके साक्षात नजरों के सामने प्रकट हो गए, तब उनका नाम मदन गोपाल था, वही मदन मोहन जी है, वो प्रकट हुए और उनका फिर उन्होंने सेवा किया वहां पर अद्वैत वट के आसपास, अपने ही मंदिर जगह के आसपास भजन स्थली के पास, और जब महाप्रभु जी के अवतार होने का समय आया तो उन्होंने उसको दिया पुरुषोत्तम चौबे को, चौबे यानी चतुर्वेदी, जो आज भी उनका वंश वहां पर मथुरा में है, चतुर्वेदी जी बहुत फेमस है, तो वो मथुरा चले गए और माँ अद्वैत आचार्य नवद्वीप शांतिपुर चले गए, वहां से फिर वो नवद्वीप आए और महाप्रभु के घर के सामने महल बनाया अद्वैत भवन, वो लंबी अलग कहानी है, लेकिन उसके बाद में महाप्रभु जी प्रकट हुए, फिर वो 24 साल नवद्वीप में रहे, फिर उन्होंने संन्यास लिया, फिर वो दक्षिण भारत भ्रमण में गए, फिर जगन्नाथपुरी गए, हाँ उसके बाद में उन्होंने सनातन गोस्वामी को वाराणसी में शिक्षा दिया 2 महीने के लिए, फिर वो कुछ समय वृंदावन आए, फिर वहां से वापस जगन्नाथपुरी गए, वहां पर कुछ एक साल रहे, वहां पर महाप्रभु के आदेश से फिर लौट के आए, और जब लौट के आए तो महाप्रभु जी ने सनातन जी रूप गोस्वामी जी और सभी गोस्वामी को आदेश दिया था कि आपको जाकर वृंदावन को पुनर्स्थापित करना है, और इतिहास के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के पहले वृंदावन पूरा लुप्त हो चुका था, करीब करीब 400 साल तक वृंदावन पूरा लुप्त था, उसके अंदर कुछ नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था, कोई विग्रह नहीं, सब विग्रह भी लुप्त हो चुके थे भगवान की इच्छा के अनुसार, तो उनको भी महाप्रभु जी ने आदेश दिया था कि आप शास्त्र लिखो, विग्रहों की स्थापना करो, आचार विचार का ग्रंथ लिखो, लोगों को प्रचार करके लोगों को सिखाओ और विग्रह स्थापन करो भगवान के, तो उनको सबको पता था ऐतिहासिक रूप में कि मदन मोहन जी भी थे, कहाँ पर है पता नहीं, गोविंद जी भी है वो कहाँ है पता नहीं, गोपीनाथ जी भी वो ढूंढते थे बेचारे मधु पंडित जी, कोथा है कृष्णा करके ढूंढते थे, एक बार जमुना में गिर गए तो जमुना में से गोपीनाथ जी प्रकट हो गए, वो भी एक लंबी कहानी है, एनीवेज तो ये मथुरा में सनातन गोस्वामी जब पहुंचे, आपको अभी लगता होगा कि ये सब बातें कैसे सत्य हो सकती हैं, भिक्षा करने के लिए कोई गृहस्थ वृंदावन में था नहीं उस समय, कैन यू इमेजिन दिस, एक पूरा जंगल ही जंगल था, वहां पर सब जगह शेर पेर घुमा घुमा करते थे, यहां तक कि प्रभुपाद ने जब जमीन लिया ना, कौन सा रमन रेती वाला, तब भी वहां पर शेर घुमा करते थे, लोग पूछते थे प्रभुपाद जी आपने वहां पर क्यों जगह लिया, तो शेर घूमने की जगह है, जुहू में जगह लिया तो भी लोगों को यही कहते थे कि वहां पर क्यों जगह लिया, हाँ वो तो खूंखार जानवर घूमते रहते, प्रभुपाद ने कहा वेट एंड वॉच, फिर जंगल में मंगल कर दिया उन्होंने राज कह सकता है कोई कि जुहू जंगल था, तो अमिताभ बच्चन भी बंगला बना के रह रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ, देखिए आप ये संतों की दूरदृष्टि है, वृंदावन में भी वही था, तो वैसे जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी वृंदावन आए थे तो पूरा जंगल था, और 2-4 दिन में एक बार मथुरा जाया करते थे भिक्षा करने के लिए, बोलो आप, कैन यू इमेजिन, भूख लगी तो आपको कहाँ जाना है, 11 किलोमीटर चल के जाना है, उसके बाद में भिक्षा करेंगे, वहां से लौट के आएंगे और वहां से लौट के आके आटा पानी में भिगाएंगे और बाटी को भुनेंगे तब खाने को मिलेगा, और ये सब कौन कर रहा है, जिनके पास बोट लोड्स भर के स्वर्ण मुद्राएं थी, जिन्होंने कई साल तक ऐश्वर्य का पूरा पूर अनुभव किया था, वो अभी कोपिनधारी हो गए हैं, और 11 किलोमीटर चल रहे हैं भिक्षा करने के लिए। ऐसे दो चार दिनों में एक बार ऐसे गए थे भिक्षा करने के लिए, तो उनको अचानक 12 साल के एक दिव्य तेजस्वी बालक का दर्शन हुआ। उसको देखकर इनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रु आने लगे, रोमांच होने लगा, भाव विभोर हो गए और पुकारने लगे, भागने लगे उसके पीछे, तो बालक गायब हो गया। घर लौट के आए विरह में, तो रात को स्वप्न में आया सोम बालक। वो कहता है फलाने फलाने पुरुषोत्तम चौबे नाम का चतुर्वेदी ब्राह्मण है, उसके घर में मैं मिलूंगा आपको, कल आना फिर भिक्षा करने के लिए। तो दूसरे दिन भाग के गए वहां पर, पूछते रहे पुरुषोत्तम चौबे का घर कहाँ है, तो लोग कहते हैं वो तो परलोक सिधार गए, केवल उनकी पत्नी है वो यहां गली में रहती है। तो घर पहुंचे उसके, तो जो बुढ़िया है वो उसी बालक को डंडा दिखा के डांट रही है, तो बहुत शरारती हो गया है, तो बहुत मस्ती करता है, समय पर घर पे नहीं आता है, मैं तुम्हें पीटूंगी, अभी चुपचाप खाना खाओ। तो वो बालक जो दिखाई पड़ा ना पहले दिन पड़ा था, जो सपनों में आया था, वो वहां पर खड़ा है और वो कांप रहा है और डर डर के खाना खा रहा है। तो फिर बालक से बात करती हो कि देखो अभी ना पति रहे, ना बच्चा रहा, ना धन रहा, और मैं भी बुढ़िया हो गई, दांत भी गिर गए, अभी तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हें कौन लोरी सुनाएगा, तुम्हें कौन गीत गाकर सुबह उठाएगा, कौन माखन मिश्री का भोग लगाएगा। ऐसे वो बोल रही है, तो पीछे से ये बोल रही दरवाजे पे खड़े होके, मैं करूंगा, मुझे दे दीजिए आप। ध्यान से सुनिए क्या बुढ़िया जवाब देती है, अरे तुम अपना सर्वनाश क्यों करना चाहते हो, ये जब भी मेरे जिंदगी में आए ना, तब मेरे घर में पति थे, बच्चे थे, धन दौलत थी, जमीन थी, सब लुट गया मेरा, सब लुट गया, अभी केवल मैं हूं और ये है, बच्चे भी चले गए, पति भी गुजर गए, धन भी चला गया, जमीन भी गई, मैं तो एकदम भिखारी हो गई। तो इनके मायाजाल में मत फंसना आप, ये सर्वनाश कर देंगे। तो गोस्वामी जी वो क्या जवाब देते हैं, मैं भी इनके चक्र में आया ना, मेरा भी सब कुछ लुट गया, मैं बड़े पद पे था वो पद भी चला गया, बोट लोड्स के सुवर्ण मोहराए थी वो भी लुट गया, अभी मेरे पास केवल एक कूपन है, तो मुझे लगता नहीं कि इसके आगे कोई नाश होगा। और सी हाउ साधुस थिंक, हाँ वी हैव टू लर्न कि साधु सोचते कैसे है, मतलब अभी कूपन बचे गए तो कूपन का आपके क्या नुकसान हो सकता है मेरा, तो आई कैन टेक हिम, आई डोंट माइंड। एक उसकी एक पैरेलल कहानी भी ऐसी है कि गोस्वामी जी ने वो मैया को ना सिखाया बहुत कुछ, अरे मैया ऐसे बात नहीं करते ठाकुर जी से, उनको तो बहुत बड़े मंत्र बोलना चाहिए, आप तो डांट रही है डंडा लेके, ऐसा भाव नहीं होता है, वो तो ऐसा पूजा करना चाहिए, वैसा पूजा करना है, बड़ी भोली भाली माता जी थी वो, एकदम समझ गई वो, अरे महाराज जी बराबर कह रहे हैं, मैं इतना डांटती हूँ उनको, वो सही नहीं है। तो वो भिक्षा लिया और घर आए, ऐसी एक कहानी है। घर आके सपने में आके ठाकुर जी सपने में आए, बोले तुमने ना सारा गड़बड़ कर दिया उधर, मैं बड़े मजे में था, मैया का डांट खाता था, मुझे बड़ा आनंद आता था, तुमने आके बोर्ड पट्टी पढ़ाई उसको, तब से मुझे पूजा ही कर रही वो, मुझे भी आनंद नहीं आ रहा है वहां पर, अभी जो आनंद था अभी तुम्हारे पास ही आऊंगा, तुम्हारी सेवा लूंगा, तुम जो जानते हो ना बहुत बड़ा शास्त्र जानते हो, मैं तुम्हारी सेवा लूंगा, कल जाओ और भिक्षा में मुझे लेके आओ अपने घर पे। वो बुढ़िया को भी स्वप्न दिया, वो सपने में आए कि कल जो बाबा आए थे ना तो समझा बुझा के गए आपको, उनको दे देना मुझे आपका। तो वो रोने लगी मुझसे, क्या अपराध हुआ, क्या अपराध हुआ, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा है तो पालन किया उसने। दूसरे दिन भिक्षा मांगने गए तो ये ठाकुर जी को ही भिक्षा में दे दिया। तो अभी सनातन गोस्वामी अभी सोच विचार पड़ गए ना, अभी तो गड़बड़ कर दिया मैंने, फिर मैं साथ में आ रहे हैं, और रास्ता में ना सिर्फ कहते हैं कि हाथ पकड़ के ठाकुर जी और गोस्वामी जी चल रहे हैं वृंदावन की ओर, और रास्ते में बात कर रहे हैं कि देखो भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, दो चार दिन में एक बार भिक्षा करता हूँ, वो भी चल के जाना पड़ता है मथुरा में, तब कुछ मिलता है, और मैं तो मेरे पास कोई चूल्हा वूल्हा है नहीं, मैं तो ऐसी लकड़ी लेके आग लगा देता हूँ, उसमें थोड़ी बाटी बनाता हूँ जमुना जल से आटे की, उसको भूनता हूँ और वो भोग लगा के खाता हूँ, मैं दो जो भी तुम्हें मिलेगा वो मुझे भोग लगा दो। देखो बाद में कहना नहीं है, वो मिठाई चाहिए तुमको, तो बड़ी बड़ी मिठाई मक्खन खाने की आदत है, तुम बहुत स्पॉइल्ड लड़का हो, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, अरे कोई बात नहीं जो तुम दोगे तो मैं खाऊंगा। देखो पक्का ना, ऐसे बात करते 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 वृंदावन पहुंचते हैं, बोले मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उसको बुढ़िया के पास कम से कम घर था, मेरे पास घर भी नहीं, मैं तो रोज अपने पेड़ बदली कर देता हूँ, रोज नया पेड़ रहने के लिए, पेड़ के नीचे आपको रहना है, वहीं सोना है, वहीं खाना है, वहीं पीना है, जो भी कुछ है मैं घूम के आया करूंगा, आप वहीं को आपको बैठना है, बोले कोई जहाँ रखोगे वहां रखो। तो ये द्वादश आदित्य तिल पे वो पेड़ के नीचे रहने लगे। तो एक दिन बोलते, अरे सनातन कितना दिन से तुम बाटी खिला रहे हो, क्या नमक नहीं कुछ नहीं उसके अंदर, स्वाद नहीं आ रहा है जरा, कुछ करो। तो कहते हैं कि वो पहले ना कुछ भी भिक्षा मिलके खाते थे वो, लेकिन जब से ये आए ना तो खास आटे की भिक्षा मांगने लगे, आटा दो आटा दो आटा दो, क्योंकि उनको आटा की बाटी बना के उनको खिलाते थे। तो इनके लिए नमक का भी मांग करने लगे, थोड़ा नमक भी दिया करो करके। फिर वो नमक में डालने लगे बाटी, नमक डाल के करने लगे। एक दिन बोलते हैं कि नेक्स्ट वो घी डाला करो यार, तो कंठ से उतरेगा तुम्हारी बाटी, तुम्हारी बाटी कंठ से उतरती नहीं, इतनी सूखी सूखी बाटी कंठ में कैसे उतरेगी। तो कहते हैं कि तुम अभी घी मांग रहे हो, तो मुझे अभी एक सन्यासी को घी की भिक्षा कौन देगा बताओ आप। सन्यासी बोलेगा भवती भिक्षान देही कृतम देही हाँ नमनीत देही, तो कौन देगा उनको। तो तुम्हें जरूरत क्या है घी की, तुम सूखी रोटी खाओ, तुम विरक्त बने हो संत बने हो। तो मेरे लिए कितना संकोच की बात है कि तुम्हारे लिए मैं घी की भिक्षा भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं कर लूँ मेरी व्यवस्था, कर लो तुम जो करना है कर लो, तुम मालिक हो। तो कह रहे तुम्हारी परमिशन का ही इंतजार कर रहा था मैं। ठाकुर जी तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो चक्र होता है पूरा, फिर वो रामचंद्र कपूर वहां से निकलते हैं, हाँ नमक लेकर निकलते हैं, और नमक लेकर निकलते हैं आगरा की ओर जाने के लिए, वहां पर उनको बेचना होता है। बहुत लंबी कहानी है, उनकी जहाज फंसता है। उस समय जमुना जी का वर्णन ऐसे आता है कि जमुना जी का जल पाताल लोक तक पहुंचता था, इतनी गहरी जमुना जी समुद्र की तरह दिखाई पड़ती थी, लेकिन वो बहता हुआ पानी था नदी। तो उसमें वो जहाज लेकर पंजाब से निकल रहा, मतलब पंजाब से जमुना जी का कनेक्शन था, और वहां से इतना बड़ा जहाज लेकर वो आया आगरा जाने के लिए। मतलब आगरा तक भी जमुना जी आज भी है वैसे, लेकिन थोड़ा सिकड़ी हुई है, लेकिन आज भी आगरा में जमुना जी का प्रवाह है। तो उसको वहां से जाकर वृंदावन से होकर आगरा जाकर उसको बेचना था और पैसा कमाना था। तो वृंदावन में कुछ तूफान सा आ गया जमुना जी के बीच में, और वो गोल गोल घूमने लगा उसका जहाज जो था। तो ये बेचारा कैसे भी कूदा उसमें से और तैरते हुए किनारे पे आया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मेरा जहाज घूम रहा है, जहाज घूम रहा है। तो उसमें मदन मोहन जी नीचे खेल रहे हैं, ऊपर विग्रह के रूप में भी रहते हैं और नीचे ब्रजवासी बालक के साथ में जमुना किनारे खेलते भी हैं, जैसे वो मथुरा में भी खेलते थे जब ये वहां गए थे ना, दर्शन कैसे हुआ था, बालक के साथ खेल रहे थे जमुना जी के किनारे, उसे यहाँ पर भी खेल रहे। तो वहां क्या बात हो, तो जो कृष्ण है सांवला सा बालक मदन मोहन जी जो है, वो कहते हैं कि ऊपर एक बाबा बैठे सनातन बाबा, उनकी कृपा से आप उनकी दुहाई दो, जय जयकार करो। तो वहीं से पुकार लेगा, सनातन गोस्वामी की जय, सनातन गोस्वामी की जय। तो जहां दुहाई दुहाई लगाई ना, इधर हमारे मदन मोहन जी ने अपना फेटा निकाला, ऐसा हवा में घुमाया उसको, हाँ ऐसे वो किया था ना मध्वाचार्य ने, पता है ना आपको, उधर मलपे बीच में घुमाया था ऐसे, और बोट को ऐसे खींच के लेके आए थे वायु को नियंत्रित करके, वैसे ही हवा को नियंत्रित किया और वो बोट को है ना किनारे लगा दिया। अभी तो ऊपर पहुंचे ही नहीं, तो बालक कह रहा है देखो देखो आपने दुहाई दिया बाबा की कृपा से, देखो तुम्हारा जहाज बच गया। तो वो भाग भाग के ऊपर गए, कौन है बाबा कौन है बाबा, तो दर्शन दिया, बाबा जी वहां भजन कर रहे थे, उनको तो कुछ भी पता नहीं है, वो कहानी बता रहे आपकी कृपा से जहाज बच गया, आपको क्या चाहिए, आपको सब मेरा सब आपका ही है। तो बोले मैं तो फकीर आदमी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि वो उसके बाद में ना मदन मोहन जी का चमत्कार देखो, उसके बाद में वो जहाज लेकर आगरा गया, उसका मन में ठान लिया था कि ये सब माल बेचूंगा और बाबा को आके ले दूंगा। इस विचार के वजह से जब वो आगरा पहुंचा तो सारा नमक का रूपांतर कपूर में हुआ, नमक ट्रांसफॉर्म इंटू कपूर, और नमक की वैल्यू और कपूर की वैल्यू में कितना फर्क है। तो उसने कई गुना जो वो एक्सपेक्टेड था ना, उसका कई गुना ज्यादा धन कमाया उसने, और वो धन लेकर वापस आया वो, और बड़े आनंद से कहा कि मुझे बताइए आपकी सेवा में क्या करना है। तो बोले मुझे तो कुछ, मैं तो संन्यास्त व्यक्ति हूँ, विरक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाइए। तो फिर रामचंद्र कपूर ने अपने धन से ये मंदिर बनाया। वो कहते हैं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग और राइट आई डोंट नो, पर समवेयर 1590 के आसपास, गौरांग प्रभु को एग्जैक्टली पता है वो कौन से साल में ये मंदिर रेडी हुआ, और उसके बाद में गोविंद जी का मंदिर बना, उसके बाद में गोपीनाथ जी का मंदिर बना। तो कम से कम कहते हैं कि 100 साल तक ना वृंदावन में बहुत ऐसा बहुत ही सुवर्ण काल रहा, ये सब विग्रह पुनर्स्थापित किए गए, मंदिर बने, बहुत सुंदर वैष्णवों का धर्म का प्रचार हुआ, गोस्वामी लोगों ने बहुत सुंदर प्रचार किया, उसका विस्तार होता रहा, ब्रज में हुआ, ब्रज के बाहर हुआ। और फिर 1670 में फिर औरंगजेब आया और उसने ये मंदिर तोड़ा, तो उसके बाद में राजा गुणानंद ने उसको दोबारा बांधा, और प्रतिमा मूर्ति स्थापन की उसमें, लेकिन ये विग्रह जो है वो जयपुर जा चुके थे। तो इस तरह से जब सनातन गोस्वामी इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो अपने शिष्य श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी को उन्होंने मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा पेड़ के नीचे करने के लिए सौंप दी, और वो फिर चक्रेश्वर महादेव रहने के लिए और फिर पावन सरोवर किनारे रहने के लिए चले गए। तो अभी इसमें एक ना एक ऐसा रोचक इतिहास है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ऊंचे गांव में नारद मुनि का अवतार हुआ, नारायण भट्ट गोस्वामी, है ना। और हमारे जितने गौड़िया वैष्णव गोस्वामी हैं उन्होंने दक्षिण ब्रज का पूरा पुनर्स्थापना किया है, गोवर्धन के दक्षिण दिशा में, यानी मथुरा की ओर जितने वृंदावन के सारे मंदिर और जो भी स्थान है उनका पूरा जीर्णोद्धार जो है वो हमारे गोस्वामी ने किया है। कुछ कुछ जगह का जीर्णोद्धार लोकनाथ गोस्वामी ने इधर का भी किया है उत्तर दिशा में, लेकिन उत्तर दिशा मतलब बरसाना, नंदगांव, काम्यवन, ये स्थान जो है ना वहाँ का सारा जीर्ण जो पुनर्स्थापना है वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने किया है। और साथ साथ जो ब्रज का कल्चर है ना, रास लीला करने का कल्चर, यानी कि ड्रामा के रूप में ब्रज कल्चर को आगे वृद्धि कराने का जो कल्चर है ना, अभी आज भी वो नाटिकाएं रास लीला के रूप में बड़ी बड़ी मंडलियां करती रहती है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन उत्सव में आते हैं, वो बहुत फेमस है, फतेह कृष्ण मंडली। वो जो कल्चर था वो स्थापन करने का श्रेय नारायण भट्ट गोस्वामी को जाता है। तो ये नारायण गोस्वामी का जन्म जो है वो ऊंचे गांव में हुआ था, और ऊंचे गांव में उन्होंने रेवती बलराम के विग्रह प्रकट किए जो वज्रनाम ने बनाए थे, जो ऊंचे गांव में स्थापन किए थे वज्रनाम ने, वो हींस की झाड़ी में उन्होंने प्रकट किए। ललिता जी की शिला जो विग्रह था, राधा कृष्ण ललिता का शिला था, उसका उन्होंने उत्खनन में उसका प्रकट किया उसको, जो मंदिर में आज भी विराजमान है वहां पर। तो उन्हें राधा रानी ने स्वप्न दिया कि मैं फलाने जगह पर ब्रह्माचल में हूं। स्वप्न में हाथ पकड़कर नारायण भट्ट गोस्वामी को वो ले गई राधा रानी और दिखाया कि इधर हूं मैं, मुझे यहां से निकालो और मेरे भानु महल में स्थापन करो। आज भी वो स्थान है, आप जाएंगे ना भानु मंदिर से, शिवजी मंदिर से, कुशल बिहारी मंदिर में बीच में एक ऐसा पेड़ आता है बड़ा, बहुत डेकोरेशन किया रहता है वहां पर और वो पट्टी वट्टी लगा के रखा है, वो है श्री जी का प्रकट स्थान। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने श्री जी को फिर उत्खनन करके प्रकट किया, जैसे रूप गोस्वामी ने योगपीठ पे उत्खनन करके गोविंद जी को प्रकट किया और फिर मंदिर में स्थापना किया। तो श्री जी ने उनको स्वप्न दिया था कि आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदन मोहन मंदिर में जाओ, वहां पर श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी है, उनसे अनुग्रह लेना आप। तो ये मिलने के लिए आए थे मदन मोहन जी के मंदिर में, लेकिन जब मंदिर में पहुंचे तो शयन दोपहर का हो चुका था, राजभोग के बाद वाला, और कोई नहीं मंदिर, मंदिर पट भी बंद है मंदिर में, और कोई पुजारी वाजी को है नहीं। और ये आए तो दुखी हो गए कि अरे अभी तो 4 घंटे रुकना पड़ेगा और ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। तो जैसे ही आए ना नारायण भट्ट गोस्वामी, तो मदन मोहन जी ने पट खोल दिए स्वयं, और मदन मोहन जी खुद उतर के आए और उनसे वार्तालाप करने लगे, और उनके वार्तालाप के ध्वनि से सनातन गोस्वामी और कृष्णदास ब्रह्मचारी उठ गए और देखे नहीं कौन बात कर रहे हैं, देखते तो क्या नारायण भट्ट गोस्वामी स्वयं मदन मोहन जी से संवाद कर रहे हैं। तो उस समय उसके बाद वापस वो मूर्ति रूप हो गए, और फिर भगवान की इच्छा के, राधा रानी की इच्छा के अनुसार श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जो केयरटेकर गोस्वामी थे, उन्होंने नारायण भट्ट गोस्वामी को बहुत बड़ी शिक्षा दी है, और उसके बाद में वो वापस चले गए हैं, उन्होंने वहां के उत्तर ब्रज का पुनर्स्थापना किया है। ये भी इतिहास मदन मोहन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कई प्रकार की अद्भुत चीजें हैं ब्रज के इतिहास में। तो सनातन गोस्वामी की ऐसी अनन्य कृपा है, उनका कार्य सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो बिगिनिंग पॉइंट है, वो भौतिक दुनिया में जो फंसे हुए लोग हैं उनको पकड़कर अपने चरणों में लाते हैं, सनातन गोस्वामी और उनके विग्रह मदन मोहन जी। जयताम सरतो पंगोर मम मंद मतिर गति, यानी जो सबकी हमारी जो मति जो भ्रष्ट हो गई, ऐसे मंद और भ्रष्ट गति जिसकी है उनको वो आकर्षित करते हैं, और उनको आकर्षित करने के बाद में बाकी सारे विग्रह और गोस्वामी उन पर काम करते हैं। रिक्रूटमेंट का काम कौन करते हैं? मदन मोहन जी। इसलिए राधानाथ महाराज जी ने बाकी सारे मंदिर छोटे छोटे बनाए, मदन मोहन जी का मंदिर बड़ा बनाया है। उनका उनका दूरदृष्टि क्या है, उसमें विजन क्या है उनका, कि मदन मोहन जी सब लोगों को पकड़ पकड़ कर लाएंगे फिर वृंदावन में उनको पॉलिश करेंगे हम अंदर। ये उनका विजन है। आगे आप देखिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे रास्ते निकलते हैं मदन मुझे के सामने से सीधे उनका दर्शन करने के लिए। अभी थोड़ा टेढ़ा है ना, थोड़ा रुको आप, कुछ समय के बाद पता चलेगा मदन मोहन जी का चमत्कार क्या है। मदन मोहन जी का यहाँ प्रकट होना कोई साधारण चीज नहीं है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्षेत्र बनेगा जिसमें सब लोग आकर्षित होकर देखने के लिए आएंगे और उनका हृदय का परिवर्तन होगा। क्योंकि मदन मोहन जी जब प्रकट हुए ना पूरी शक्ति के साथ में यहाँ पर, तो वो सब जीवों को खींचने वाले हैं, सब जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, माया से मुक्त करके अपने चरणों की ओर उनको आकर्षित करने वाले हैं। महाप्रभु की अनन्य कृपा है ये मदन मोहन जी की प्रकट होना यहाँ पर। तो इसलिए ये मत समझना कि गोवर्धन इको विलेज रेप्लिका ऑफ वृंदावन है, वृंदावन की प्रतिकृति है, यहाँ पर एक सिंबॉलिकली बनाया गया है, वन थर्ड एक तिहाई स्वरूप में उसको प्रोपोर्शनली बनाया गया है, ऐसा मत समझना। ये साक्षात वृंदावन है और एक एक गुप्त प्रकार का वृंदावन है। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन है ना आपकी हृदय की भावना के अनुसार प्रकट होगा। अगर भावना की कमी है तो नहीं प्रकट होगा, भावना है तो उसके अनुसार ही प्रकट होगा। ज्यादा भावना है ज्यादा प्रकट होगा, कम भावना है तो कम प्रकट होगा। एक ही जगह पर आप सब लोग रहेंगे लेकिन अपने अपनी भावना के अनुसार कुछ कहेंगे, अरे बहुत दिन वृंदावन नहीं गए, वृंदावन जाना है, अभी एक दिन वहां घूम के आना है। इसका मतलब पूरी श्रद्धा नहीं है हमें, वहां जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यहां पर उसका अनुभव न होना यह दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ पर उसका अनुभव होना ही भाग्य की बात है। तो वो वृंदावन आपके हृदय में प्रकट होगा यहाँ इसी के माध्यम से। ये वृंदावन आपको उस वृंदावन के लिए ही कनेक्ट करेगा और वही अनुभूति आपको यहाँ पर भी देगा। तब हमारे जीवन की परिपूर्णता होगी जब हम वो वृंदावन की अनुभूति यहाँ पर करेंगे। ये गुरु की हमारे पर कृपा होगी कि वो वृंदावन जो कण कण में हमको दिखाई पड़ना चाहिए वो पहले यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, फिर कण कण में दिखाई पड़ेगा, फिर हृदय में प्रस्थापित होगा, फिर दुनिया में प्रकाशित होगा। धाम जो है ना पहले हृदय में प्रकाशित होता है, उसके बाद लोगों को उसका अनुभव मिलता है। प्रभुपाद जी के हृदय में वो धाम प्रकाशित था, इसलिए जहां जहां गए लोगों को वृंदावन की अनुभूति हुई, वृंदावन के प्रति आकर्षण हुआ, इसलिए भाग भाग के वो वृंदावन आए दर्शन करने के लिए। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण और चिंतनीय बातें हैं, ये हमको विचार करना बहुत जरूरी है। और कभी कभी कैसा होता ना, राजाला दिवाली का माहित, ऐसे मराठी में कहावत है, क्योंकि राजा रोज मिठाई खाता है, रोज चकली खाता है, रोज लड्डू खाता है, रोज सब कुछ मिठाई खाता है जो दिवाली में गरीब लोग बनाते हैं। तो रोज खाने की वजह से उसको पता चलता नहीं दिवाली आई कब गई और कब आई। तो हमारा भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम श्री वृंदावन में रह रहे हैं फिर भी बाहर कहीं खुशी और समाधान ढूंढ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो उस स्थिति से बचना बहुत जरूरी है। और हमारे सामने जो दिव्य गौरव प्रकट हुआ है उसको सदैव अनुभूति में रखना ये बहुत आवश्यक है। टू कीप ऑलवेज इंटैक्ट द रियलाइजेशन कि वी आर द विटनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन आवर लाइफ, ये चिंतनीय विषय है। और ये चिंतन हमारा रहेगा तो हमारा जीईवी में रहना सफल है। तो यहां रह के भी हम बंबई में रह रहे हैं या बंबई में रह के भी भाई बाहर रह रहे हैं, सो दिस इज आवर फॉर्चून। अभी मैं तो कभी कभी आता हूं, तो हो सकता है मुझे कभी कभी आता है इसलिए ज्यादा आकर्षण होगा, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मदन मोहन जी के दर्शन में जो शक्ति है ना वो अद्भुत और अवर्णनीय शक्ति है। इनको कभी देखना बंद करना ऐसा लगता ही नहीं है कि आई शुड जस्ट गो बैक नाउ। ही हैज गॉट अनलिमिटेड अट्रैक्शन इन हिम एंड यू कैन गो ऑन सीइंग हिम फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। उनके एक एक अंग जो आज तो उनके दर्शन में इतनी चमक है और इतना तेज है और इतना गौरव है उनके दर्शन में कि आप नजर ही नहीं हटा सकते उनके ऊपर से। तो इसी प्रकार से वो सभी जीवों को आकर्षित करने वाले हैं। बार बार मैं कहना चाहूंगा, अनंत बार कहना चाहूंगा कि हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ मदन मोहन जी से आज के उनके आविर्भाव दिवस के उत्सव के समय पर कि उनकी कृपा हम सब पर, आप सब पर सदैव बनी रहे और ये अनुभूति हमारे जीवन के सौभाग्य की हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे और हम इसी आनंद में इस जीवन को चलाएं और इसी आनंद में हमारे जीवन की समाप्ति हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा मदन मोहन जी भगवान की जय हो। एक छोटी सी बात रह गई, जब इनका विग्रह मिला मतलब सनातन गोस्वामी को, और जब मंदिर बनाया गया तभी प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जीना जगन्नाथपुरी में राजा बने थे, तो उन्होंने वहां पर दो विग्रह बनाकर भेजे, एक छोटा सा और एक थोड़ा बड़ा माताओं का मतलब देवी का। तो मदन मोहन जी स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि छोटा विग्रह जो है वो राधा रानी है और बड़ा विग्रह जो ललिता है, ललिता को बड़े विग्रह को मेरे दाहिने हाथ में दक्षिण अंग में स्थापन करना और वाम अंग में राधा रानी का विग्रह स्थापन करना। तो पुरुषोत्तम जीना की कृपा से राधा रानी और ललिता जी का विग्रह प्रकट हुआ है। गोविंद जी के लिए भी उन्होंने राधा रानी के विग्रह भेजे, लेकिन वृंदा देवी के विग्रह ब्रह्मकुंड में प्रकट हुए तो वृंदा देवी उनके दाहिने हाथ में आई। और गोपीनाथ जी के लिए जानवा देवी ने फिर मंगाए और दो विग्रह भेजे, तो एक जानवा देवी एक राधा रानी, तो गोपीनाथ जी के साथ में जानवा देवी और राधा रानी है, और राधा रानी की जगह पर जानवा देवी है राधा रानी के आदेश के अनुसार स्वप्न में दिए हुए कि मुझे दक्षिणांग में रखो और वामांग में मेरी जगह पर जानवा देवी का विग्रह रखो। ऐसे इनका अद्भुत इतिहास है और कितने लोगों ने मिल मिलकर इनकी सेवाएं की। जानवा देवी ने सभी विग्रहों की, मदन मोहन जी के मंदिर पर तो मेजवानियां बनाई जानवा देवी ने, बिग बिग फिश सी कुक्ड पर्सनली एंड सर्व्ड ऑल द गोस्वामीज ओवर हियर एंड डिवोटीज ओवर, देन गोविंद जी के पास में, देन गोपीनाथ जी के पास में, सब जगह जगह जाकर उन्हें बड़े बड़े भोज बनाए, अब सब लोगों को आनंद दिया जानवा देवी ने। तो इनका भी यहाँ पे लीला है जानवा देवी का, तो आइए उनका हम स्मरण करते रहे, चिंतन करते रहे, अपने जीवन को धन्य करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग बोलेंगे जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदम भोजौ राधा मदन मोहनौ राधा मदन मोहनौ। श्री ललिता देवी राधा मदन मोहन जी महाराज की जय हो।